ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 5 मई 2019 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ: दानियल। यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तब भी तो दया सागर और क्षमा की खानी है। उत्तरदायी अध्ययन: भजन सेनता। हे परमेश्वर यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रूष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको फेर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपत रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक खौफ करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूँगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त हैं, शांति की बातें कहेगा, परंतु वो फिरकर मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके दिरवाइयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन सेनता। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेख ना ले और जिसकी आत्मा में कापत ना हो। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे पाप और अधर्म को क्षमा किया। यशाया। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। तुम में सूखी घास का गर्भ रहेगा, तुम से भूसे उत्पन्न होंगे, तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोग फूंके हुए चूने के सामान हो जाएंगे और कटे हुए कतेले पीड़ों की नियन आग में जलाए जाएंगे। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो, मेरा पराक्रम जान लो। सेउन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आँख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वो चट्टानों के गिडानों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घाटी कभी ना होगी, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। कोई निवासी नहीं कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा। लूका। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि ये तो पापियों के साथ मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता न रहे? और जब मिल जाती है तो वो बड़े आनंद के साथ उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में होता है जिन्हें मन फिराने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र अपना सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुक्रम में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा काल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेत में सुअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जो सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ, मुझे अपने एक मजदूर के नियन रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। लूका, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा की जाएगी। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इफ़्सियों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लयपालक पुत्र हों, कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में प्रेम दिया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के दान के अनुसार मिला है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहायक संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर ने सभी को मन से बनाया और सभी को पूर्ण और शाश्वत बनाया। जब यीशु ने परमेश्वर के बच्चों की बात की, ना कि पुरुषों के बच्चों की बात की, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका मतलब है सत्य और प्रेम वास्तविक मनुष्य में राज्य करता है। ये दर्शाता है कि भगवान की छवि में आदमी बेदाग और शाश्वत है। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया जो उसे दिखाई दिया, जहाँ पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण ने बीमारों को उपचार दिया। इस प्रकार यीशु ने सिखाया कि ईश्वर का राज्य अक्षण है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र है। उसकी शुद्धता के अनुपात में मनुष्य परिपूर्ण है और पुरंता खागुली होने का कर्म है। जो जीवन को उसी में प्रदर्शित करता है, जीवन का आध्यात्मिक आदर्श है। ईश्वर या अच्छाई कभी भी मनुष्य को पाप करने में सक्षम नहीं बनाता है। ईश्वर पाप, बीमारी और मौत पैदा करने में असमर्थ है, क्योंकि वो इन त्रुटियों का अनुभव कर रहा है। उसके बाद मनुष्य के लिए ये कैसे संभव है कि वो त्रुटियों का इस तरह अधीन हो, यानी वो मनुष्य जो दिव्य समानता में बना है। भगवान वो है जिसकी आंखें अस्पष्ट नहीं देख सकती। उसे स्वीकार करके नहीं, बल्कि एक झूठे को खारिज करके हम सत्य को बनाए रखते हैं। यीशु ने व्यक्तिगत बुराई के बारे में कहा कि ये झूठा है और इसका जनक है। सत्य ना तो झूठे को पैदा करता है, ना झूठ बोलने वाले की क्षमता रखता है, ना ही ये झूठ पैदा करता है। यदि मानव जाति इस विश्वास को त्याग देती है कि ईश्वर बीमारी, पाप और मृत्यु का जन्म देता है, तो ये मनुष्य को इस पुरुषवादी तरह के कारण पीड़ित करने में सक्षम बनाता है, जो त्रुटि की नींव में डूब जाएगी और त्रुटि का विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। पाप में उत्तम विनाश के तत्व हैं। ये खुद को बनाए नहीं रख सकते। यदि पाप का समर्थन किया जाता है तो भगवान को इसे बनाए रखना चाहिए। ये असंभव है, क्योंकि सत्य त्रुटि को समर्थन नहीं कर सकता। पाप का नाश ही क्षमा का दिव्य तरीका है। ईश्वर जीवन मृत्यु को नष्ट करता है, सत्य त्रुटि को नष्ट करता है और प्रेम घृणा को नष्ट करता है। नष्ट होने के नाते पाप को क्षमा का कोई अन्य रूप नहीं चाहिए। पाप के परिणाम के रूप में पीड़ित होने के लिए पाप को नष्ट करने का साधन है। जब तक भौतिक जीवन में पाप नष्ट नहीं हो जाता, तब तक पाप का हर आनंद उसके दर्द के बराबर होगा। ये मानने के लिए कि ईश्वर क्षमा करता है या पाप को दंडित करता है, जैसा कि उसके दया की मांग की गई है, बिना शर्त के प्यार को गलत समझना और प्रार्थना को अपराध के लिए सुरक्षा कवच बनाना है। यीशु ने पाप को उजागर और झिड़क दिया इससे पहले कि वो इसे बाहर निकालता। एक बीमार महिला के बारे में उसने कहा कि शैतान ने उसका बाधे किया था, और पत्रस को उसने कहा, तुम मेरे लिए रुकने का कारण हो। वो आदमियों को सिखा रहा था और दिखा रहा था कि पाप, बीमारी और मौत को कैसे नष्ट किया जाए। गलत काम करने का दुख है, लेकिन ये सुधार की दिशा में एक कदम और बहुत आसान कदम है। ज्ञान द्वारा अवश्य अगला और महान कदम हमारी ईमानदारी की परीक्षा है, अर्थात सुधार। इसके लिए हमें परिस्थितियों के तनाव में रखा गया है। प्रलोभन बोली हमारे अपराध को दोहराती है। इस तरह ये हमेशा रहेगा, जब तक कि हम ये नहीं सीख लेते कि न्याय के कानून में कोई छूट नहीं है और हमें पूरी तरह से भुगतान करना होगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और ये भरा जाएगा और ऊपर छल रहा होगा। अपवित्रता पर पवित्रता का अभिवादन करते हुए, ये कहते हुए कि पाप को क्षमा किया जा सकता है, जब ये त्याग नहीं किया जाता है तो ये ऊँटों को निगलने जैसी मूर्खता है। ईश्वर और मनुष्य के बीच मौजूद वैज्ञानिक एकता को व्यवहार में बदल देना चाहिए और ईश्वर को सर्वव्यापी होना चाहिए। पाप और क्षमा स्वार्थ और कामुकता की आशा के बीच में पेंडुलम की तरह झूलते हुए निरंतर प्रतिगमन का कारण बनता है। हमारी नैतिक प्रगति धीमी होगी। मसीह की मांग के प्रति जागते हुए नश्वर दुख का अनुभव करते हैं। ये उनके कारण होता है, यहाँ तक के डूबने वाले पुरुषों के रूप में खुद को बचाने के लिए जोरदार प्रयास करना और मसीह के अनमोल प्रेम के माध्यम से इन प्रयासों की सफलता मिलती है। अपने स्वयं के उद्धार का काम करें, ये जीवन और प्रेम की मांग है। इस अंत के लिए भगवान आपके साथ काम करता है। जब तक मैं ना आऊँ, तब तक दृढ़ रहना। अपने इनाम की प्रतीक्षा करें और अच्छाई करने में थके नहीं। यदि आपके प्रयास भयभीत बाधों से घिरे हुए हैं और आपको कोई वर्तमान इनाम नहीं मिलता है, तो गलती पर वापस ना जाएं और ना ही दौड़ में सुस्त बनें। जब लड़ाई का धुआं दूर हो जाएगा तो आप अपने द्वारा की गई अच्छाई को समझेंगे और अपने योग्य के अनुसार प्राप्त करेंगे। प्रेम हमें प्रलोभन देने के लिए जल्दी में नहीं है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है कि हमें कोशिश और शुद्ध करना होगा। त्रुटि से अंतिम उद्धार, जिससे हम अमरता, असीम स्वतंत्रता और पापाहीन भावना में आनंदित होते हैं, इस पर फूलों के रास्ते से नहीं पहुंचा जा सकता और ना ही किसी के विश्वास के बिना किसी दूसरे के प्रयासों पर विश्वास करके। जो कोई भी ये मानता है कि क्रोध धार्मिक है, वह देवता मानवीय पीड़ाओं से प्रभावित है, वो परमेश्वर को नहीं समझता। न्याय के लिए पापी की सुधार की आवश्यकता है। दया कर्ज को तभी रद्द करती है जब न्याय स्वीकृत होता है। यदि कोई व्यक्ति एक पापी है, तंबाकू नोशी का गुलाम है या पाप के असंख्य रूपों में से किसी एक का विशेष सेवक है, तो इन गलतियों को सत्य के होने से नष्ट करें। गलत काम करने वाले को पीड़ित करके और उसे ये विश्वास दिलाते हुए कि झूठी भूख में कोई वास्तविक आनंद नहीं है। एक भ्रष्ट दिमाग एक भ्रष्ट शरीर में प्राकृत होता है। वासना, द्वेष और सभी प्रकार की बुराई रोगाग्रस्त विश्वास हैं, और आप उन्हें केवल उन दुष्ट उद्देश्यों को नष्ट करके ही नष्ट कर सकते हैं जो उन्हें उत्पन्न करते हैं। यदि पश्चाताप नश्वर मन में बुराई खत्म हो गई है, जबकि इसका प्रभाव अभी भी व्यक्ति पर बना हुआ है, तो आप इस विकार को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का कानून पूरा हो गया है और अपराध को रद्द कर देते हैं। स्वस्थ पापी कठोर पापी होता है। सत्य त्रुटि पर कोई क्षमा नहीं करता है, लेकिन प्रभावशाली तरीके से मिटा देते हैं। पश्चाताप आध्यात्मिक बपतिस्मा और उठान के माध्यम से नश्वर अपने भावतिक विश्वासों और झूठे व्यक्तित्व को बंद कर देते हैं। ये केवल समय का सवाल है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा यानी ईश्वर का ज्ञान रखेंगे। पिधारत के दावों से इनकार, आत्मा की खुशियों की ओर, मानव स्वतंत्रता और शरीर पर अंतिम विजय की ओर एक बड़ा कदम है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए। ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। उद्देश्यों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के उद्देश्यों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्या प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने के लिए भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।